ஓம் சாந்தி. நிச்சய புத்தி தீவிர புருஷார்த்தி. பிரம்மன் ஜீவன் கா ஃபவுண்டேஷன் ஹே, நிச்சய புத்தி பன்கர் ஆகே படத்தே ரஹனா. ஜித்னா நிச்சய புத்தி ஹம் பன்தே ஹே, உத்னா ஹர் பரிஸ்தி மே விஜய் பன்கர் ஆகே படத்தே ரத்தே ஹே. तो बाबा का काम है बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाना, और माया का काम है बच्चों को संशय बुद्धि बनाना. दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं. डाउट है तो आउट है, फेथ है तो साथ है. माया हमारे मन में डाउट क्रिएट करती है और आउट करती है. गेट आउट, आप इस सभा में बैठने के लायक नहीं है. और बाबा हमें हर प्रकार की युक्तियां बताते हैं, विधियां बताते हैं, और हमें निश्चय बुद्धि बनाते हैं और साथ भी पूरा देते हैं. तो माया के बड़े बड़े जो तूफान होते हैं, वो नीचे के फाउंडेशन को उखाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं. जैसे दुनिया में बड़े तूफान आते हैं तो पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ के फेंकते हैं, ऐसे माया भी पुराने बच्चों को भी तूफान के द्वारा हिलाती है. और फाउंडेशन हिलते रहने से फाउंडेशन कमजोर भी हो जाता है. इसलिए निश्चय बुद्धि हमेशा त्रिनेत्री बनकर हर कार्य करते हैं. तीसरे नेत्र से हर पहलू को देखते हैं, और माया दुश्मन से कभी वो धोखा नहीं खाते हैं. ठीक है, वे निश्चय बुद्धि हमें चार बातों में बनना है. संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना, 1% भी संशय ना हो. पहली बात, स्वयं पर पूरा निश्चय होना. भगवान ने करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा में कुछ विशेषता देखी, उसके आधार पर करोड़ों में मेरा सिलेक्शन किया और नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए मुझे सिलेक्ट किया. हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, लेकिन करोड़ों में सिलेक्शन किया. भाई बताओ कितने भाग्यशाली. और किसने किया? कोई अधिकारी ने नहीं किया, स्वयं भगवान ने किया. भाई ताली तो बजाओ जरा. अच्छी तरह से तो कभी भी स्वयं की क्षमता पर, विशेषता पर, प्रतिभा पर, गुणों पर, रिंचक मात्र भी विशेष संशय न हो। मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं, बिल्कुल संशय न हो। मैं 100% ये कार्य करके रहूंगा। हम देखते हैं इतने सालों से बाबा की पालना, प्रभु पालना में हम पल रहे हैं, उल्लास नगर माना सदा उल्लास में रहने वाले, नशे में रहने वाले, खुशी में रहने। ताली तो बजाओ भाई। ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है उल्लास नगर। उल्लास नगर माना सदा उल्लास में रहने वाले, सदा नशे में झूमने वाले, खुशी में रहने वाले। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई देखना नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सुख मिल गया। नशा नहीं रहता है इसका मतलब स्वयं पर निश्चय पूरा नहीं है। दूसरी बात, बाबा पर पूरा निश्चय है। भगवान जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, तो पूरे निश्चय के साथ मुझे मददगार बनकर रहना है और आगे बढ़ना है। तो बाप पर पूरा निश्चय हो, रिंचक मात्र भी हमारा बाबा पर संशय न हो। कई बार क्या होता है, हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो हम बाबा को दोष देते हैं, पता नहीं बाबा मुझे क्यों मदद नहीं करते हैं। उसके कारण निश्चय का सिंहासन हिलने लगता है। हमारे इतने जन्मों के हिसाब किताब भी हैं, उसके कारण किसी कार्य में सफलता मिलती है, किसी में ना भी नहीं मिलती है, फिर भी हमें बाबा पर पूरा निश्चय रखना है। तीसरी बात, ड्रामा पर पूरा निश्चय होना। ये ड्रामा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और इस ड्रामा में मेरा जो रोल है वो भी बहुत अच्छा है। हम सभी हीरो एक्टर है, हीरो केवल एक्टर नहीं है, हीरो एक्टर है, हीरो केवल स्टार नहीं है, सुपर स्टार है, और बाबा सुप्रीम स्टार है। बाप रे बाप, और एक सुपर स्टार बैठा है यहां। दुनिया में जो शारीरिक सुंदरता के आधार पर सिलेक्शन होता है स्टार के रूप में, अभिनेता के रूप में, उनके साथ फोटो लेने के लिए लोग भागते हैं। हम केवल स्टार नहीं है, सुपर स्टार है, हीरो एक्टर हैं। हमारे कारण जितनी भी इन्वेंशन संसार में होती है हमारे कारण होती है, और उसका लाभ दूसरी आत्माओं को मिलता है। इसलिए ड्रामा पर पूरा निश्चय। और चौथा, ब्राह्मण परिवार पर भी पूरा निश्चय हो। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं देखते रहें, उनके गुण देखते रहें, और उनके प्रति सम्मान हमारा बढ़ता रहें, उनको सहयोग लेते रहें और देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? हथेली पर पर्वत उठाने वाले को हनुमान कहते हैं। ये हमारा गायन है। लेकिन अनुमान, किसी भी प्रकार का संशय, अनुमान हमें हनुमान जैसा बलशाली शक्तिशाली बनने नहीं देता है। इसलिए कभी भी थोड़ा सा भी अनुमान मुझे अपने मन में नहीं लाना है। निश्चय बुद्धि की निशानियां क्या है? कई कहते हैं हमारा बहुत निश्चय है बाबा पर, लेकिन उसकी निशानियां भी हमें दिखाई देनी चाहिए जीवन में। उसकी पांच निशानियां हैं। पहली निशानी, निश्चय से नशा और नशे से निशाना। जितना निश्चय होता है उतना नशा अनुभव होता है, और वो ईश्वरीय नशा हमें संपूर्णता के निशाने की ओर तेजी से आगे बढ़ाता रहता है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर लिया वन, क्योंकि शुरू दिन से ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था, नारायणी नशा रहता था। मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूं, सारे संसार में नंबर वन बनने वाला। अभी मैं बूढ़े शरीर में हूं, कल मैं मिचनू बनने वाला हूं। जिसके पीछे दुनिया पागल है वो मिचनू बनने वाला हूं मैं। इतना नशा बाबा को पहले दिन से रहता था। उसके कारण संपूर्णता के निशाने पर बाबा तेजी से पहुंच गए। दूसरी निशानी, निश्चय बुद्धि आत्मा हर कार्य में विजयी मेरी निश्चित है ऐसा अनुभव करता है। मुझे इसमें विजय मिलेगा या नहीं, नहीं, मेरा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान मेरे साथ हैं, निश्चय मेरी निश्चित है, निश्चित विजय है, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहता है। तीसरी निशानी, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा बेफिक्र बादशाह की तरह सदा रहता है। कोई भी फिक्र या कोई भी चिंता उसके पास फटक नहीं सकती है। ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सभी सुनते हैं। बेगरी पहाड़ के समय एक दिन शिव बाबा ऊपर से आके ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोल के चले गए मुरली में, आज बाबा हलवा पूरी दोपहर को लंच में खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। मम्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई, बाबा भंडारी में पैसे नहीं, कैसे होगा, इतनों को 300 को हलवा पूरी खिलाएंगे। बच्चे वो बोल के गया, मैंने नहीं कहा, वो जाने उसका काम जाने। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह रहा। 10 बज रहे फिर भी कुछ नहीं, मैं चिंता निश्चिंत। फटाफट पोस्टमैन आया, उसमें चेक लाया, चेक विश्व के ईश्वर भाव को दिया, भाव बैंक में गए, पैसा लाया, चीजें खरीदे, सबकी थाली में हलवा पूरी लंच के समय। रहेंगे निश्चिंत इतना, उस पर भरोसा है। एक बल एक भरोसे पर बाबा सदा अटल रहे। हम कभी कभी बाबा पर डाउट लगते हैं, पता नहीं इस कार्य में मुझे बाबा मदद करेगा या नहीं, उसके कारण जिम्मेदारी वापस ले लेते हैं और चिल्लाते हैं, टेंशन अनुभव करते हैं, चिंता लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। चौथी निशानी, निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जब माया का तूफान आता है, निश्चय का सिंहासन हिलता है, उस समय निश्चय बुद्धि आत्माएं अचल और अडोल रहते हैं। उनको कभी भी कोई हिला नहीं सकता है। पांचवी निशानी, निश्चय बुद्धि आत्मा हर बात में बिंदु अनुभव करके बिंदु लगाता है और आगे बढ़ता है। क्वेश्चन मार्क उसके मन में नहीं होता है, ये क्यों हो गया, कैसा हो गया, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अनहोनी बात भी अगर होती है तो वो निश्चिंत रहता है, खुदा को ये मंजूर है ना। तो ये निशानियां हमें अपने में चेक करना है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, निश्चयंती विजयंती। विजय का तिलक जन्मते ही बाबा ने हमारे माथे पर लगा दिया है। भगवान जिसके साथ में है उन्हों को विजय नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी, बाबा स्पष्ट कहते हैं। लेकिन इन डाउट क्यों हमारे मन में आता है, क्योंकि द्वापर युग से माया के जेल में गुलाम बनकर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में डाउट आता रहता है। 2500 वर्षों तक गुलाम बनकर रहे, उसके कारण हीन भावना आत्मा में कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हमें उभरने ही नहीं देती है। हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, हमें सतयुग त्रेता युग में देखना है। बाबा कहते हैं मेरे पास जो नई दुनिया बनाने जा रहा हूं, उसके जो सिंहासन है राजा महाराजाओं को उसको बिठाने के लिए आप बच्चों के बिना कोई और भी नहीं है। और कोई भाई ताली तो बजाओ जरा अच्छी तरह से। आपके बिना मैं किसी को बिठा ही नहीं सकता हूं, कोई लायक ही नहीं है आपके जैसे, आपको ही सिंहासन पर बैठना है। ठीक है ना भाई। लेकिन क्या होता है, चलते चलते हम थोड़ा सा पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। पुरुषार्थ में हमेशा तीव्रता बरकरार रहे हैं, उसके लिए कुछ बातें कुछ युक्तियां हमारे मन में बुद्धि में सदा रहनी चाहिए। चलते हैं, निश्चय पूरा है, लेकिन जो तीव्रता होनी चाहिए, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है संपन्नता की ओर, और हमारा पुरुषार्थ अगर तीव्रता से नहीं होगा तो समय पर हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे और समय के पहले बाबा से खजाने नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लेट का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड लगना माना दुकान बंद हो जाना। दुकान बंद होगा तो कुछ मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो 10 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसमें से एक या दो भी बात आपके बुद्धि में रहती हैं तो कभी भी पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं आएगा। पहली बात, डायरिया जिसके पास है लिखो। सुना होगा आपने पहले क्लास, लेकिन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और भी पहली बात, कई सोचते हैं अंत में समय अभी बाकी है, जब समय आएगा तब हम अलर्ट होके पुरुषार्थ करेंगे और मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है, इसलिए उड़ती कला में उड़ने का समय है। तीव्रता से आगे बढ़ना जरूरी है। बाबा ने कई बार कहा है कभी भी समय पर भरोसा नहीं रखो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। एक याद हमें बात रखना है, अभी कुछ ही पल पास है तेरे। क्या बोला, अभी कुछ ही पल पास है तेरे पुरुषार्थ के लिए, समाप्ति नजदीक है। तो इसलिए समय हाथ से चला गया तो मुझे केवल हाथ मलते रहना होगा। पछताना ही होगा। दूसरी बात, हमेशा तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए याद रखिए, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा महान श्रेष्ठ बनना। राम सीता कोई भी नहीं बनना चाहता है, राम सीता के पीछे दुनिया पागल है और वो हम बनना नहीं चाहते, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण भी मेरे पास जीवन में होने चाहिए। अगर लक्षण नहीं होगे तो साधारण प्रजा में मुझे साधारण पद मिलेगा। ऐसे ऊंचे लक्षण प्राप्त करने के लिए मुझे तीव्रता से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कोई चॉइस नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है। समझा? लक्ष्य मेरा ऊंचा है तो लक्षण भी मेरे पास जीवन में ऐसे धारण मुझे करते रहना है। तीसरी बात, कभी भी ये भूलना नहीं है, मेरा टीचर स्वयं भगवान है। कोई साधु नहीं है, महात्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं है, मेरा टीचर स्वयं भगवान है। टीचर शोज स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट शोज टीचर। टीचर का नाम अगर मुझे बाला करना है तो मुझे श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मुझे पुरुषार्थ में तीव्रता लाना जरूरी है, नहीं तो श्रेष्ठ स्थिति नहीं बना सकूंगा। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, लिखो, कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है, आत्माओं के द्वारा और प्रकृति तत्वों के द्वारा जैसी हमारी अवस्था होती है वैसी व्यवस्था होती है। इसलिए टीचर का नाम मुझे बाला करना है तो पुरुषार्थ में तीव्रता लाकर श्रेष्ठ स्थिति बनानी ही होगी। चौथी बात, सदा याद रखिए कि भाग्य बनाने का चांस केवल एक ही बार मिलता है। सारे कल्प में कितनी बार मिलता है? केवल एक ही बार। सारा कल्प भाग्य खाने का है, लेकिन भाग्य बनाने का, जमा करने का केवल एक ही बार मौका मिलता है। इसलिए क्या करना है? हाँ जी, बीसों नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है। क्यों बीसों नाखून का जोर कहते हैं? दस हाथ के नाखून और दस पैर के नाखून, माना एड़ी से चोटी तक जितना दमखम है, जितनी पोटेंशियल है, जितनी प्रतिभा मेरे में है, उस सारी लगा के पुरुषार्थ में चार चांद लगाना और बाबा से खजाने लूटना। क्योंकि खजाने लूटने का चांस एक ही बार मिलता है। जो होशियार होते हैं, जो मौके पर क्या चौके से खुश है, भाई बताओ श्याम भाई, चौके से खुश है? छक्का मारो ना, क्यों दो कम मार लेते हो? मिले चौका तो मारो छक्का, चांस मुझे नहीं छोड़ना है। ऐसे है ना भाई परमानंद भाई? ये मौके मुश्किल से तो मिलते हैं और क्लब में एक ही बार मिलता है। तो भाग्य बनाने का काल यही है। इसलिए स्लोगन हमेशा याद रखना है, अल्लाह की बेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये भाग्य बनाने की बेला है, अल्लाह की बेला है, इसलिए अल्लाह की बेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। तपस्या में सबसे बड़े घातक और बाधक शत्रु कौन है? आलस्य और अलबेलापन। ठीक है, पांचवी बात, पांचवी निशानी है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये स्मृति सदा रहे और मेरे पीछे बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। मैं अगर पुरुषार्थ में शिथिल रहूंगा तो सबका पुरुषार्थ शिथिल होगा, ठंडा होगा। ट्रैफिक में कोई अगर धीमी गति से गाड़ी चलाता है ना, पीछे गाड़ी चलाने वाले कहते कैसा गाड़ी चलाता है, अकल भी नहीं इसको गाड़ी चलाने की, कहते ना। तो मैं पूर्वज आत्मा हूं और मेरे पीछे लंबी क्यों है, तो इनका भाग्य बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे पर है, इसलिए मुझे तीव्रता से आगे बढ़ना ही होगा। तो मुझे भाग्य अपना बनाकर इन आत्माओं का भाग्य बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे पर है, इसलिए पुरुषार्थ में कभी भी ढीलापन नहीं आ सकता है ना। अकेले नहीं, हम हमारे साथ में बहुत बड़ा कारवा चल रहा है, हजारों लाखों आत्माएं हमारे पीछे हैं, पूर्वज तने में बैठे हैं कल्पवृक्ष के, इस सारे आत्माओं रूपी पत्ते हैं, इनका प्रोग्रेस कराना आगे बढ़ाना जिम्मेदारी हमारे पर है। कहते ना, जिसके माथे मामला, आगे क्या बोलते हैं है? उसको सिंधी कहावत है ना, उसको नींद कहां से आए, ब्रह्मा बाबा भी कहते बच्चे मुझे नींद नहीं आती है, रात रात जाके बच्चों को सहयोग देना पड़ता है, सकार देना पड़ता है, मेरे सिर पर बहुत बड़ा मामला है ना। छठवी युक्ति, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए नवीनता रखना चाहिए। नवीनता और तीव्रता ये दोनों एक दो के पूरक है, सपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तीव्रता लाना है तो नवीनता जरूर चाहिए। आपको हर रोज कोई आलू की सब्जी खिलाएगा ना, बाद में कहेंगे ये क्या आलू, आलू हर दिन वही, लेकिन वो बनाने वाला होशियार होगा, आलू के नए नए आइटम बना के लाएगा, खाने वाला बड़े चाव से खाएगा। तो नवीनता पाने के लिए केवल मनन चिंतन करना ही हॉबी हमारी हो, यही हमें मदद करती है, क्योंकि मनन चिंतन के द्वारा नई नई युक्तियां, नए नए पॉइंट्स, नई नई टचिंग बाबा से मिलती रहती हैं और पुरुषार्थ में तीव्रता बरकरार रहती है। न्यूनेस ये मनुष्य की टेंडेंसी है, ये नेचर है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है। तो न्यूनेस लाने का तरीका है कि मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो, डेली आधा पौना घंटा मैंने एकांत में बैठकर मुरली का जो ज्ञान है उस पर मनन चिंतन करना है, चाहे कितना भी बिजी हो, क्योंकि उस सागर से हमें नए नए रतन मिलते हैं, नई नई टचिंग्स मिलती है। ठीक है, सातवीं युक्ति, पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए एक सीन सदा हमारे सामने हो। कौन सा सीन? हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस स्पिरिचुअल रेस में दौड़ रहे हैं। भगवान की मुझ पर मेहरबानी हुई जो मुझे इस दौड़ में सम्मिलित होकर दौड़ने का चांस दिया, उसकी मेहरबानी मेरे पर हुई। ताली बजाओ ना अच्छी तरह से जरा। ये केवल महाराष्ट्र वाइड जो रेस नहीं है, भारत वाइड रेस नहीं है, ये विश्व वर्ल्ड वाइड रेस है। सारे ब्राह्मण आत्माएं, लाखों आत्माएं रूपी घोड़े इस रेस में दौड़ रहे हैं। और रेस में जो आगे दौड़ता है उसको देखकर सभी खुश होते हैं, और जो पीछे हांफता है दौड़ता है उसको देखकर बड़ा दया आता है, रहम आता है, बिचारा। हम बिचारे हैं क्या? ये सारी सीन बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, उस टीवी में बाबा ये रेस देखते हैं, कौन सा आत्मा रूपी घोड़ा इस रेस में दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, कैसा दौड़ रहा है। ये सीन अगर आपके सामने होगी ना तो कभी भी अलबेलापन आपके पास नहीं फटक सकता है। रेस के घोड़े का सिलेक्शन हजारों घोड़ों में किया जाता है और मालिक मुंह मांगे दाम देता है, ये घोड़ा मुझे रेस जिता के दिखाएगा, प्राइस विनर है ये जड़ा घोड़ा। रेस के घोड़े की निशानी क्या होती है भाई? किस आधार पर उसका सिलेक्शन होता है बोलिए। पुराने बाबा के बच्चे बैठे हैं उल्लासनगर वाले, हैं जी, हाँ, जितना जो एक्टिव और अलर्ट होता है, क्या बोला, जितना जो एक्टिव और अलर्ट और स्मार्ट होता है उसका सिलेक्शन रेस के घोड़े के लिए किया जाता है। हजारों में सिलेक्शन होता है और बाबा ने हमारा उस रेस के लिए सिलेक्शन किया है, तो हमारे में भी तो विशेषता है ना भाई, है कि नहीं? तो हमेशा सोचना है मैं रेस का आत्मा रूपी घोड़ा, रेस का घोड़ा हूं, मुझसे बहुत एक्टिव और अलर्ट रहना है, चुस्ती और मस्ती में रहना है। सुस्ती होगी तो माया कुश्ती खेलने के लिए आएगी, तैयार रहती वो। सुस्ती छठा विकार है लेकिन बड़ा खोटा है, छठा है लेकिन है जी बड़ा खोटा है। क्यों? पांचों को दोबारा बुलाता, आओ चांस लो, ये सुस्त राम सुस्त है, दोबारा आ जाता बुला। इसलिए सबसे बड़ा ये खोटा है, इसको हमने फटकने नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट आठवीं निशानी, समेशा पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए साइड सीन देखने में रुचि नहीं रखना है। गाड़ी तेज भगा रहे हैं, साइड सीन देख रहे हैं, पोस्टर अच्छा है देख रहे हैं, तो पहले तो एक्सीलेटर आपको कम करना होगा, नहीं तो आगे की गाड़ी को टकराएंगे और आगे की गाड़ी वाला आके आपको अपशब्द भी बोल सकता है, आपका अपमान भी कर सकता है। किधर देख रहे हो, गाड़ी चलाने की भी नहीं अक्ल नहीं तुमको, कहां देख रहे, पोस्टर को देख रहे। तो साइड सीन देखना माना दुनिया के समाचार की लेन देन में रुचि रखना, दूसरों को देखना, परदोष दर्शन करना, पर चिंतन करना, इस साइड सीन देखने में मेरी बिल्कुल रुचि न हो। देखना भी है तो बाबा ब्रह्मा को देखना है, हमारे लिए रोल मॉडल बाबा है, किसी आत्मा व्यक्ति वैभव को नहीं देखना है, और तेजी से गाड़ी को भगाना है, ठीक है। नवी बात है, बाबा कहते हैं प्रसाद में तीव्रता लाने के लिए आपके कानों में एक गीत सदा अनहद नाद के रूप में बजता रहे, अचानक और एवरेडी, अचानक और एवरेडी, ये दो शब्दों का गीत आपके कानों में सदा गूंजता रहे, सदा बजता रहे। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे एवरेडी रहना है। आज अच्छे अच्छे चल पड़े, जवान चल पड़े, किसी को भी कल क्या होगा, मेरा अंतिम श्वास कहां होगा, कब होगा, कैसा होगा, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए अचानक और एवरेडी, एवरेडी रहना, रहना माना सर्व खजानों से भरपूर रहना, स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना, उसको कहते एवरेडी। जब ऑर्डर बुलावा हो जाए, एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी डाल से उड़कर बाबा के पास बैठ जाए, सर्व खजानों से भरपूर होकर। इसलिए कहते हैं भूत है सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान है अपना। ये मेरे हाथ में है, वर्तमान मेरे हाथ में है, जितना चाहे मैं इसका लाभ ले सकता हूं। भूत और भविष्य के बारे में मुझे नहीं सोचना है। जो होशियार होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं, ठीक है। और दसवीं बात, प्रसाद में तीव्रता लाने के लिए हमेशा ईश्वरीय नशा बढ़ता रहे, बस बढ़ता ही रहे। बाबा ने हमें प्रसाद रूपी गाड़ी दी है, इस गाड़ी का ईंधन क्या है भाई? आपके पास कार है, जो भी है उसका ईंधन तो पेट्रोल या डीजल है। ये जो पुरुषार्थ रूपी कार दी है, बाबा ने गाड़ी दी है, उसका ईंधन क्या है? हाँ जी, इसका ईंधन है ईश्वरीय नशा। जहां ईश्वरीय नशा खत्म, वहां गाड़ी स्टॉप। इसलिए अमृत वेले ईश्वरीय नशे का स्टॉक फुल भर के रखें और सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में मस्त रहें। अहमदाबाद से बॉम्बे में जल्दी जाना है तो कैसे जाएंगे? सीधा फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर। फ्लाइट एक घंटे में 800-900 किलोमीटर दौड़ती है, उसका ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन उसका ईंधन जो है ना अल्ट्रा रिफाइन एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसको कहते हैं। दादी दीदी के लिए हमारी तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से, एक बार जोर से तालियां बजाओ, जोर से। देखो हमारी बड़ी दीदी पुष्पा दीदी, इनके कारण आपको ये गोल्डन चांस मिला। ये सबसे पावरफुल धरणी है सारे विश्व के ग्लोब पर, और ऐसी धरणी पर 3-4 दिन रहने का चांस मिला, ये बहुत पुण्य की बात है। और इन 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 महान हस्तियों की मेहरबानी उसमें जुटी हुई है, इसलिए दीदी के लिए खूब एक बार और तालियां बजाएं। थैंक यू। तो प्रसाद रूपी गाड़ी का जो ईंधन है ईश्वरीय नशा, दिन प्रतिदिन रिफाइन हो, अल्ट्रा रिफाइन एविएशन टर्बाइन फ्यूल जैसा। एरोप्लेन एक घंटे में 900 किलोमीटर दौड़ता है, तो ये मेरी प्रसाद रूपी गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए ईश्वरीय नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और रिफाइन होता रहे। दुनियावी नशे से नाश होता है मनुष्य का, और इस नशे से मनुष्य की शान होती है। नशा उल्टा क्या है? शान। ये ईश्वरीय नशा हमारी शान है, हमारी ज्ञान है, आत्मा की ये ज्ञान है ना। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नशा कभी गुम या कम ना होने दें, ठीक है भाई। अभी बहुत सुंदर पावरफुल योग की अनुभूति हम करने जा रहे हैं, सभी खड़े हो जाएंगे, दीदी बैठेंगे, सबको सका देगी, सब खड़े हो जाएंगे।
दिल की है सुनता सबके बैठ साम।